समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, और किसी दूसरे की जरूरत भी क्या है जब परिक्रमा है, हम हैं, आप हैं। स्टूडियो की घड़ी हमें कह रही है कि अपने श्रोताओं को बता दिया जाए कि शाम के 4:30:34 हुए हैं, जो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम परिक्रमा का समय है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से कुछ क्षेत्रीय समाचार, खेल गतिविधियां और उन महान हस्तियों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। स्वागत है सभी श्रोताओं का इस दैनिक न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, कैसे हैं आप?
हेलो नाइम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। हेलो एंड गुड डे टू एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नाइम, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first.
जी बिल्कुल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा बड़े शहरों में दशकों से आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाने की कड़ी आलोचना की।
26 नक्सलाइट सरेंडर इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़।
दिल्ली पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल।
Another Hindu youth dies in Bangladesh after being chased on suspicion of theft.
उत्तर भारत में घना कोहरा और भीषण शीतलहर जारी, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित।
ICC rejects Bangladesh Cricket Board's request to shift men's T20 World Cup matches outside India.
और बैडमिंटन में पीवी सिंधु मलेशिया ओपन की महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। और अब समाचार के आगे हम चलते हैं और देखते हैं डेटलाइन के बारे में।
Yes, absolutely. And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Youth Festival, Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026. Well, Naim, today's special broadcast comes with a strong message of hope, leadership and national pride, because the youth of Jammu and Kashmir are stepping forward to shape the future of a Viksit Bharat. And today, the city of Jammu is witnessing a moment of immense significance as the Union Territory prepares for the 29th National Youth Festival, Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026. In a ceremonial and symbolic event, the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha, shall preside over the virtual flag of ceremony of the UT's youth contingent.
और ये कार्यक्रम जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवा प्रतिभावान व्यक्ति, अधिकारी, शिक्षक और युवा मार्गदर्शक भाग ले रहे हैं। इस विशेष समारोह के दौरान उपराज्यपाल युवा प्रतिभागियों से सीधे बातचीत करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करेंगे और सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देंगे।
Yes, and friends, this is not just a send off, it is a celebration of the energy, innovation and leadership potential of the youth of Jammu and Kashmir. A 63-member contingent carefully selected after competitive and transparent process will represent the Union Territory at Bharat Mandapam, New Delhi from January 10th to January 12th, 2026.
ये युवा प्रतिनिधि छात्र, कलाकार, नव प्रवर्तक, विचारक और उभरते नेता हैं। प्रत्येक का अपना एक अनूठा सपना है, लेकिन वो एक ही लक्ष्य से एकजुट हैं, एक मजबूत और अधिक विकसित भारत में योगदान देना। प्रतिभागियों का चयन महोत्सव की 2 प्रमुख श्रेणियों के तहत किया गया है।
Yes, sir. Now let's also talk about what this are going to be.
जी.
Well, first, the Viksit Bharat Challenge Track. This track focuses on innovation, leadership, dialogue, policy, ideas, entrepreneurship, technology, sustainability and social impact. Young minds are encouraged to present solutions to real-world challenges and engage in discussions that can influence India's growth journey. And secondly, Naim,
जी.
The cultural track, a vibrant celebration of India's diversity through music, dance, theater, poetry and folk traditions. Participants showcase the rich cultural heritage of the regions, promoting unity through creativity and expression.
यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत में युवाओं की भागीदारी के सबसे बड़े मंचों में से एक है। हर साल ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हजारों युवाओं को एक साथ लाता है, जिससे सहयोग, सीखने और प्रेरणा के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार होता है। इस वर्ष के विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद में युवा नेतृत्व वाले विकास पर विशेष जोर दिया गया है। ये सुनिश्चित करते हुए कि युवा नागरिक न केवल लाभार्थी हों बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदार भी हों।
Yes, and what's a noteworthy name is that this dialogue falls closely to the National Youth Day, and the day which is observed in memory of Swami Vivekanand, whose birth anniversary on January 12th is celebrated as National Youth Day. And Swami Vivekanand believed deeply in the power of youth. His words continue to resonate even today. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Well, these ideals form the foundation of the National Youth Festival, encouraging young Indians to think fearlessly, act responsibly, and serve the nation with dedication.
Abhishek, यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में प्रतिभागी निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लेंगे: नेतृत्व और नीतिगत चर्चाएं, नवाचार और विचार चुनौतियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन, युवा संसद शैली के संवाद और राष्ट्रीय नेताओं, सलाहकारों और साथ ही युवा नवोन्मेषकों के साथ नेटवर्किंग।
Absolutely, Naim, and this event also aims to nurture confident, skilled and socially responsible leaders who are ready to contribute to India's progress in the years to come. And for Jammu and Kashmir, this moment holds special importance. The participation of its youth as such a prestigious national platform reflects the region's growing role in India's development story, driven by peace, progress, creativity and ambition.
केंद्र शासित प्रदेश का दल नई दिल्ली की यात्रा के लिए तैयार है और वो न केवल अपने व्यक्तिगत सपनों को बल्कि अपने देश में लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को भी साथ लेकर चल रहे हैं। हम जम्मू और कश्मीर के 63 युवा राजदूतों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि वो आत्मविश्वास से भरे रहें, दृढ़ निश्चय के साथ बोलें और ऐसे अनुभवों से समृद्ध होकर लौटें जो कई और लोगों को प्रेरित करें।
एंड द नेशनल यूथ फेस्टिवल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 एंड सच स्टोरीज सेलिब्रेट द पावर ऑफ यूथ एंड द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन।
और अभिषेक, वक्त है अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास क्या खास है। सबसे पहले आप किस प्रदेश के बारे में बता रहे हैं?
Well, we'll start off with a story from Ladakh. And when we think of winter tourism in Ladakh, Naim, first and foremost come the Chadar Track in mind as to many of us.
Right.
And Chadar Track is a grand work on ice sheet as well as a challenging walk on the bank of frozen Zangkar River of Ladakh. The once frozen Zanskar River used to be the only gateway for Zanskar subdivision to connect with Leh, and the rest of the world is now a popular tourist itinerary visiting Ladakh. And district administration in collaboration with the tourism department Leh and the stakeholders have started the preparation for the upcoming Chadar Track. And our Leh correspondent Yang Chang Dolma has filed a story. Let's hear more on this.
Chadar Trek is a trek on an ice sheet on the frozen Zanskar River in Ladakh. It's famous for adventure lovers to test their endurance in extreme weather conditions. Therefore, it is also considered as one of the toughest winter trek in the country, as it is conducted in the extreme cold weather conditions coupled with low level of oxygen. Due to the challenging tasks of arrangement which involve in organizing it logically and strategically, administration joined the tourism stakeholder to ensure exhilarating and rewarding travel experiences for the trekker with safety. District Administration Leh convened a joint meeting of the line department and stakeholder to finalize arrangement for the upcoming and much awaited Chadar Trek. As per the decision of the joint meeting, the date of commencement of the Chadar Trek will be announced soon on the recommendation of the Riki team. The exercise of Riki is to be conducted on January 10 to study about the complete formation of ice sheet on the roads of Zanskar River. The joint meeting held yesterday has finalized the logistic preparation, such as use of satellite phone in medical evacuation from remote areas of trek route and development of medical team and ambulance for any medical emergencies. For smooth movement of trekkers along the route, Border Road Organization and UTDRF have agreed to draw a coordination mechanism. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
ले लद्दाख के बारे में सुनकर और ज्यादा मजा आ गया। वैसे तो हमेशा ही हर किसी को लगता है कि इस मौसम में लेह लद्दाख जाना चाहिए। चादर ट्रैक का जिक्र करके आपने और ज्यादा हमारी उत्सुकता को जागृत कर दिया अभिषेक। अब क्योंकि इस मौसम की बात हो रही है तो बिहार से भी मेरे पास एक ऐसी ही इसी तरह की एक खबर है। बर्फ के बारे में तो नहीं, लेकिन बिहार के सहरसा और सुपौल जिले के कोसी तटबंध के जल जमाव वाले इलाकों में पानी के फल सिंघाड़े की खेती किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है। इस बारे में हमारे पास भी एक रिपोर्ट है।
सहरसा और सुपौल जिले में कोसी तटबंध के भीतर जल जमाव वाले क्षेत्रों में किसानों ने पारंपरिक खेती की जगह पानीफल सिंघाड़े का विकल्प चुना है। इससे कम निवेश में किसानों को अच्छा फायदा होने लगा है। स्थानीय किसान मोहम्मद आलम बताते हैं कि उनके पिता ने इस क्षेत्र में पहली बार सिंघाड़े की खेती शुरू की और अब कई किसान इसकी खेती करने लगे हैं।
पहले तो मेरा पिताजी से बहुत आदमी सीखे थे, जो काम करने के लिए आता था ना मजदूर, वो खुद ही उस मेरा पिताजी बताते थे ऐसे करो, ऐसे तोड़ कर, ऐसे गारो, ऐसे गारो, उस खुद समझ गया। अब समझने के बाद वो क्या हम ही से मोल ले करके बीज गए अपना रोपे तो ज्यादा मुनाफा हुआ, तो खुद अपना भी खेती करने लगे।
सुपौल जिले के वीरपुर से सहरसा के सलखुआ प्रखंड तक विस्तारित पूर्वी कोसी तटबंध ठंड के मौसम में सिंघाड़े की खेती के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। स्थानीय किसान अमित कुमार बताते हैं कि उन्हें लागत का दो गुना तक फायदा मिल रहा है।
सिंघाड़ा लगा के हम लोग अच्छा मुनाफा कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, तो हम लोग का लेबर जो मखाना वाला रहता है, पानी में जो काम करने वाले हैं, तो वो जो है इसमें काम करते हैं, तो इससे होता क्या है, किसान को जो होता है लेबर को भी बहुत बड़ी फायदा होता है।
सिंघाड़ा सर्दियों का सुपर फूड माना जाता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के प्रोत्साहन से यह क्षेत्र मखाना उत्पादन के बाद सिंघाड़ा उत्पादन के क्षेत्र में एक सफल मॉडल बनकर उभरेगा। परिक्रमा के लिए पटना से अभिषेक दास।
The Grand International Exposition of the Sacred Piprawar Relics of Lord Buddha, New Delhi has been opened for the public today, and the six-month-long exposition brings together for the first time the relics repatriated after more than a century with authentic relics and archaeological materials from Piprawar, Uttar Pradesh. Titled The Light and the Lotus, Relics of the Awakened One, it highlights India's deep and continuing civilizational link with the teachings of Lord Buddha. We have more from a correspondent.
The expo was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi earlier this month. Talking exclusively to Akashvani News, Director General of the National Museum and Ministry of Culture Joint Secretary Gurmeet Singh Chawla said that this repatriation reflects the renewed relevance of Buddhist philosophy as a guiding force for peace and integrated national development. He informed that it reunites the sacred relic jewels of Lord Buddha taken away during the colonial era with Piprawar relics and jewels preserved at the National Museum in New Delhi and the Indian Museum in Kolkata. He remarked that this initiative is a part of the government's sustained efforts to recover and safeguard the nation's cultural legacy.
ये exhibition अभी हमने initially अगले 6 महीनों के लिए plan किया है। ये एकदम निशुल्क है और इसका समय भी हमने सवेरे 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक रखा है। इसमें हमने extended timing इसलिए रखी है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रदर्शनी को experience करने का मौका मिल पाए।
Mr. Chawla further highlighted that the exhibition will remain open daily from 9 a.m. to 9 p.m. to enable more people to visit and gain a deeper understanding of the relics. With Adarsh and Nitika's report, Neha Goswami, Akashvani News, New Delhi.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
In badminton, star Indian player PV Sindhu advanced to the women's singles pre-quarterfinals of the Malaysia Open today. The 8th seeded Sindhu defeated Chinese Taipei Sung Shuo Yun 21-13, 22-20 in the opening round. And Sindhu will next face Japan's Tomoka Miyazaki in the second round. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended in the red after a choppy trading session. Both indices opened lower and made an attempt to rebound, but failed to sustain the momentum. However, in the last hour of trade, the indices staged a modest recovery, bearing some of the earlier losses. The Sensex fell 102 points to close at 84,961, while the Nifty declined 38 points to settle at 26,141. In the Forex market, the rupee today appreciated by 29 paise to trade at 89 rupees and 88 paise against the US dollar a short while ago. In the global crude oil market, Brent crude was trading 0.9% down at $60.17 per barrel, and WTI crude was trading almost 1.3% lower at $56.41 per barrel in intraday trade. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 1,38,680 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading down at 2,54,690 rupees per kilogram when reports last came in. And tune in to our bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this weekend for a detailed analysis of the market action. We cover stock markets in India and abroad and discuss important economic news.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस।
हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की।
This immortal verse of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, was the opening of the programs of Azad Hind Radio. After setting up a Free India Center in Berlin, Netaji Subhash Chandra Bose started Azad Hind Radio as part of Germany's radio service, which first aired on the 7th of January 1942.
The programs were meant to show solidarity with Indians living abroad, as well as those living in the subcontinent. They included news bulletins transmitted in English, Gujarati, Marathi, Bengali, Pashto, Tamil, Persian and Telugu.
हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा।
Its headquarters were shifted to Singapore, broadcasting from Berlin. Bose celebrated the wave of Japanese victories over British territories and passionately spoke about India's Quit India movement.
Azad Hind Radio aimed to counter the broadcasts of radio from allied nations during World War II.
The 7th of January is also the birth anniversary of freedom fighter and social reformer Gyananjan Niyogi. Born in 1891, Gyananjan was strongly influenced by Brahmo ideals and he tried to implement them in life. He was attracted towards the freedom movement when Bengal was partitioned in 1905.
In 1909, Gyananjan Niyogi formed the Calcutta Working Men's Institution. Apart from its educational and training activities, it organized medical assistance and carried out development work for the benefit of the poor residents living in slums. He extensively toured the rural areas of Bengal and started using the magic lantern for spreading consciousness amongst the poor and the uneducated sections of society.
In order to promote the use of indigenous materials, he used to organize the Swadeshi Mela. When Netaji Subhash Chandra Bose was the mayor of Calcutta from 1930 to 31, he requested Niyogi to organize the Swadeshi campaign.
After independence, when refugees came from East Pakistan, Gyananjan Niyogi put his heart and soul into rehabilitation work. The noble soul breathed his last on the 13th of February 1956.
Yes, and before we proceed further, Naim, let us again repeat for our listeners that you can tune in to a bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening for a detailed analysis of the market action. We cover stock markets in India and abroad and discuss important economic news. And speaking of all those greats who are associated with today's date, we also remember John Berryman, who passed away on this day in 1972. He was an American poet and scholar. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and is considered a key figure in confessional school of poetry. His 77 dream songs in 1964 won the 1965 Pulitzer Prize for Poetry.
जी जॉन बेरीमैन की आज पुण्यतिथि है और आज ही पुण्यतिथि है बिमल रॉय की. बिमल रॉय प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता जिनकी जो एक बेहद संवेदनशील और मौलिक फिल्मकार हैं जिन्होंने कला और व्यवसायिक सिनेमा के बीच एक नई परंपरा कायम करते हुए सिने दर्शकों को ऐसी फिल्में दी जो मध्यम वर्ग की सही अक्कासी करती हैं. उसने कहा था परख, काबुलीवाला, दो बीघा जमीन, बंदिनी सुजाता या फिर मधुमती जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में जो आज भी मील के पत्थर के रूप में अपनी जगह बनाए हुए हैं.
Yes, and what's interesting, Naeem, is that Bimal Roy, inspired by Italian neo-realistic cinema, he made the Do Bigha Zameen after watching Vittorio De Sica's Bicycle Thieves in 1948. And his work is particularly known for his mise en scène, which employed to portray realism.
और बिमल रॉय वो फिल्मकार थे अभिषेक जिन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए एक दो बार नहीं बल्कि 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया है. यूं तो उनकी एक से बढ़कर एक फिल्म है और उनके एक से बढ़कर एक गीत है. एक ही सुनते हैं फिल्म मधुमति का जिस पर लूजली बेस्ड फिल्म ओम शांति ओम भी बाद में बनाई गई थी.
नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है. दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे पसंद है आ जा. सुहाना सफर आई मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं. सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर.
Yes, and Sir Lewis Carl Davidson Hamilton was born on this day in 1985. He's a British racing driver who competes in Formula One for Ferrari. Hamilton has won a joint record 7 Formula One World Drivers Championship titles, tied with Michael Schumacher, and holds the records for most wins, pole positions and podium finishes, among others. Born and raised in Stevenage, Hamilton began his career in karting age 6, winning 7 national titles, attracting the attention of Ron Dennis, who signed him to the McLaren Mercedes Young Driver Program in 1998.
और मेरे पास एक और बहुत बड़ा नाम है अभिषेक जिनकी आज जयंती है. प्रसिद्ध अभिनेता साहबजादे इरफान अली खान. अब आमतौर पर हमारे श्रोता सुनके सोच रहे होंगे ये साहबजादे इरफान अली खान ऐसे कौन से प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिनको हम नहीं जानते हैं. तो हम आपको बता दें कि आम दर्शक साहबजादे इरफान अली खान को इरफान खान के नाम से जानते हैं. इरफान खान की अदाकारी की खासियत उनकी आंखों और चेहरे से दिए गए भाव हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1985 में दूरदर्शन के सीरियल श्रीकांत से की थी. इसके अलावा उन्होंने भारत एक खो, चाणक्य, चंद्रकांता, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात और संजय खान के धारावाहिक जय हनुमान में काम किया. बाद में द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेम से एक रोग जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाया.
Yes, and Khan made his Irfan Khan of course made his film debut with a small role in Salaam Bombay in 1988, which was followed by years of struggle. He acted in a few Film and Television Institute of India student films such as Reconnaissance 1990, directed by Sandeep Chattopadhyay, and his first Hindi movie was Ek Doctor Ki Maut in 1919, which he portrayed a journalist and shared a major role opposite lead players Pankaj Kapoor and Shaban Azmi.
Absolutely.
And after this movie, he acted in the British film The Warrior, like you said, and he had his breakthrough as a leading actor in Hindi movies Hasil in 2003 and Maqbool in 2004. And then, of course, he went on to gain critical acclaim for his roles in The Namesake in 2006, for which he was nominated for the Independent Spirit Award for Best Supporting Male.
और उसके अलावा एक चीज और बता दें अपने श्रोताओं को कि हासिल फिल्म जिसका जिक्र आपने किया था 2004 का सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला था इसके लिए. और इसके साथ ही और भी बहुत सारी फिल्में, स्लमडॉग मिलियनियर, लाइफ ऑफ अ पाई ऐसी फिल्में हैं जिनका नाम हम ना लें तो बात अधूरी रह जाएगी, लेकिन वक्त नहीं है कि इतनी सारी बात करें. उनकी फिल्म का एक बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग सुनते हैं.
खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता. चांद में दाग है ये चांद.
भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता।
लाइफ ऑफ पाई ऐसी फिल्म थी जिसको अभी तक श्रोता याद रखे हुए, उसका एक संवाद हो जाए अभिषेक।
एब्सोल्युटली,
मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। मैंने अपने पिता से जो भी कुछ सीखा उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। उनके दिए हुए सबक के बिना मैं कभी जिंदा नहीं बच पाता।
Yes, and Kenneth Clark Loggins was born on this day in 1948. He's an American singer, songwriter, and guitarist. His early songs were recorded with a Nitty Gritty Dirt Band in 1970, which led to 7 albums recorded with Jim Messina as Loggins and Messina from 1972 to 1977. His early soundtrack contributions date back to A Star Is Born in 1976, and he is known as the king of the movie soundtrack. And as a solo artist, Loggins experienced a string of soundtrack successes, including an Academy Award nomination for Footloose in 1985. Let's listen to it.
आज जयंती है शास्त्रीय वादक आर के बीजापुरी की। संगीत वाद्य हारमोनियम के प्रसिद्ध वादक थे वो। आर के बीजापुरी का जन्म 1917 में कागवाड़ बेलगाम जिला कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता कल्लो पंत बीजापुर एक नाटककार और संगीतकार थे। आर के बीजापुरी के पहले गुरु अन्नगरी मलैया थे। और एक खास बात उनके साथ ये है कि उन्होंने अपनी शिक्षा के अंतर्गत संगीत विशारद और अखिल भारतीय गंधर्व विद्यालय से महाविद्यालय से संगीत अलंकार की उपाधियां प्राप्त की थी।
Yes, of course. And Supriya Pathak Kapoor was born on this day in 1961. She is an Indian actress who works in Gujarati and Hindi films and television. And she garnered widespread recognition and acclaim with a portrayal of Hansa Parekh in the Khichdi franchise. And she has received several awards, including a Filmfare OTT Award and 3 Filmfare Awards. And she also featured in the hit TV serial Idhar Udhar in the 1980s. And
Aya, tere paas gajre to honge?
Nahi, main baalon mein gajre nahi dalti.
हाय हाय कभी नहीं।
ओह माय,
देखो तुझे ऐसे हल्का हल्का नहीं लगता सर में?
नहीं, मेरे सर में दिमाग है, उसी के वजन से काम चला लेती हूँ।
Yes, and Juan Rulfo passed away on this day in 1986. He was a Mexican writer, screenwriter, and photographer. He is best known for 2 literary works in the 1955 novel Pedro Paramo and the collection of short stories El Ilano y Ilemas, The Burning Plain in 1953. In spite of Rulfo's slim literary production, he is considered one of the greatest Mexican and Latin American writers of the 20th century, who has influenced many subsequent writers, including the Nobel laureate Gabriel Garcia Marquez.
और जानकी देवी बजाज की भी आज जयंती है, जो एक गांधीवादी जीवन शैली की समर्थक थी। उन्होंने कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में काफी सहयोग किया। वो एक स्वावलंबी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनके व्यक्तित्व में एक विरोधाभास सा था। जानकी देवी बजाज जहां दानी, मितव्ययी और कठोर थी, वहीं दूसरी तरफ दयालु भी बहुत थी। जानकी देवी बजाज के आजीवन किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और
Cage was born on this day as an American actor and film producer, is a recipient of various accolades, and Cage's work across diverse film genres has gained him a significant cult following.
और आज जन्मदिन है हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय का। 1970 और 80 के दशक में अनेक हिट फिल्मों में उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए शर्मिला टैगोर के साथ 1998 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। अपनापन के लिए 1977 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था।
Yes, and Rina Roy, born Saira Ali. In 1976, Roy entered the top league after starring in 2 of the biggest box office hits, the action thriller Kali Charan and the horror film Nagin.
और श्रोताओ, अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नईम अख्तर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।